मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्यारे साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 1 अगस्त 2016 है और ऐसे अवसर संयोग बहुत कम आते हैं जब आपका सप्ताह का पहला दिन हो और महीने की पहली तारीख हो। आज है सोमवार और तारीख है 1 अगस्त। तो मैं आप सबके प्रति जो अभी संडे को सिविल सर्विस प्री में बैठने जा रहे हैं उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वहां भी आपकी सफलता के संयोग ईश्वर उपस्थित करे। तो मित्रों, आप सबके स्वागत के बाद अब मैं स्वागत करता हूं अपने उन 4 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी के अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं अरविंद कुमार मिश्रा, आप इलाहाबाद से हैं। विमलेश राजपूत, आप इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। दीपक सिंह, आप अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। और पीयूष कुमार सिकंदरा से हैं। तो अरविंद, विमलेश, दीपक और पीयूष, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने आपसे वायदा किया था कि अब मैं लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत कुछ उस तरह की चीजों को लूंगा जो आपके अभी जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं संडे को, उसमें पर्सनालिटी वाइज, मेंटल एनर्जी वाइज, या कह लीजिए कि इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी वाइज भी आपकी कुछ मदद कर सके। वैसे तो मित्रों, अगर सच पूछिए तो अलग से इसके लिए कुछ बात होती नहीं है, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी ही हुई होती हैं और सब एक दूसरे का सपोर्ट ही करती हैं। लेकिन चूंकि कुछ स्टूडेंट्स की इस तरह की रिक्वेस्ट थी तो इसीलिए अब कुछ समय तक मैं अपनी बात उन्हीं की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए करूंगा, लेकिन यह केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसे आप फैला करके अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र पर लागू कर सकते हैं। मित्रों, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग एक प्रोग्राम देखते हो, डिवाइस ऑफ किड्स, उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे और बच्चियां आती हैं और एक तरह से वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, है ना। तीन लोगों के सामने उन्हें अपना परफॉर्मेंस देना पड़ता है। उसमें एक है शेखर जो म्यूजिशियन है, एक है नीति जो सिंगर है और एक है शान, पुराना नाम है आप जानते हैं, जो गाते भी हैं और अभिनय भी उन्होंने किए हैं। तो मित्रों, ये तीनों मौजूद रहते हैं और उनके सामने लड़के और लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां आकर के क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन देती हैं, सुन के दंग रह जाना पड़ता है कि क्या इनकी उम्र है 8 साल और 10 साल और आवाज में इतनी लोच है, गजब की बात। मित्रों, उनमें जब पूछा जाता है उनसे किसी से कि आप कब से ये गाना सीख रहे हैं, तो कोई कहता मैं 3 साल से सीख रहा हूं, कोई कहता मैं 5 साल से सीख रही हूं, किसी के घर में पापा सिखा रहे हैं, किसी की मम्मी गायिका है। तो बड़ा एक विचित्र किस्म का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है और चीजें सुनने को भी मिलती हैं। वहां से लगता है कि जीवन के कितने तथ्य निकाले जा सकते हैं और जो वाकई में आगे चलकर जो लोग सफल होते हैं उन सफलताओं के बीज आखिर में रहते कहां हैं। अब जो बच्चा 3 साल से म्यूजिक सीख रहा हो, आप कल्पना करके देखिए कि वो अब 10 साल तक पहुंचते पहुंचते 7 साल तो वो सीख चुका है और हम हैं जो कि 10 साल में शुरू करते हैं किसी चीज को। और सच पूछे तो ग्रेजुएशन तक तो हम यही फैसला नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है, और वो है कि 3 साल की उम्र से ही, भले ही उनके बिहाव पर, उस बच्चे या बच्ची के बिहाव पर उनके पेरेंट्स ने फैसला किया हो, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। खैर, मेरा पर्पस ये नहीं था। उसमें मित्रों, एक बच्ची आई, 10 साल की उसकी उम्र होगी और उसने जब अपना गाना परफॉर्मेंस दिया तो इन तीनों जजेज ने अपना बजर बजा दिया। बजर बजाने का मतलब होता है कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट यू, हम आपको अपनी टीम में लेने के लिए तैयार हैं और हम आपको गाना सिखाएंगे। तो तीनों ने बजा दिया, या हो सकता है कि दो ने बजाया हो, है ना, थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि कई लोग बजाते रहते हैं। तो उससे पूछा गया कि अच्छा तुम किसको प्रीफर करोगी, किसके पास जाना चाहोगी, है ना, वो पूछते हैं सिंगर से कि अब आपको अगर दो या तीन लोग लेने को तैयार है तो आप किसको चूज करेंगे। तो उसने कहा, उस बच्ची ने, कि मैं शान को चूज करती हूं। क्यों क्यों आपने शान को चूज किया? तो उसने जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि शान सर, मुझे आपकी जो स्माइल है वो बहुत अच्छी लगती है। अब ये 10 साल की बच्ची कह रही स्माइल बहुत अच्छी लगती है। तो मित्रों, माहौल भी बड़ा खुशनुमा होता है कभी, आप देखिएगा उसको। मैं अक्सर, चूंकि मैडम देखती है, मेरी पत्नी उसे बहुत पसंद करती है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मित्रों, फिर शेखर ने एक बात कही, है ना, जो तीन लोगों में एक शेखर भी है, म्यूजिशियन है और बड़ा अच्छे, बहुत अच्छे दिखते हैं, आप देखिएगा ना, तो उनके चेहरे पर एक बड़े मुस्कुराहट और बड़ी शांति और बड़ी सरलता, सहजता, सौम्यता वो दिखाई देती है शेखर के भी चेहरे पर। तो शेखर ने कहा कि शान, मैं ये देखता हूं कि लड़कियां तुम्हारे जो स्माइल है उसकी बड़ी तारीफ करती हैं, आखिर तुम्हारी स्माइल में ऐसा है क्या? तो शान ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है क्या, अब मुझे क्या मालूम कि मेरे स्माइल में क्या है। तो शान ने नीति से पूछा, वहां एक फीमेल जज भी है, और नीति से पूछा कि दीदी तुम बताओ कि क्यों ऐसा है, मतलब मेरे स्माइल में ऐसा क्या है। मित्रों, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि नीति इतना खूबसूरत जवाब देगी। सच पूछे तो मुझे भी उसकी स्माइल अच्छी लगती है, लेकिन अगर मुझे पूछा जाता कि क्यों अच्छी लगती है तो शायद मेरा यही उत्तर होता कि भाई अच्छी लगती है। मैं उतने सटीक तरीके से शायद अपनी बात को नहीं रख पाता जितने सटीक तरीके से नीति ने रखा। उसने कहा, शान, असली में लगता यह है कि तुम्हारी जो स्माइल है ना, ये बड़ी जेन्यून है। बस मित्रों, स्माइल बड़ी जेन्यून है। इसी को मित्रों हम अपने शब्दों में, अपनी भाषा में पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। तुम्हारी हंसी बड़ी पवित्र है, तुम्हारी हंसी बड़ी सरल है, तुम्हारी हंसी बड़ी सहज है, तुम्हारी हंसी बड़ी स्वाभाविक है, तुम्हारी हंसी बड़ी निश्चल है। अब आप कुछ भी नाम इसे देते चले जाइए, शायद जेन्यून शब्द में इतनी ताकत है कि वो इन सारे जितने भी नाम अभी मैंने लिए हैं उन सबको वो समेट लेती है। मतलब जेन्यून है, प्योर है, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। अब बट नेचुरल है कि जब मैंने शान के हंसी को इस पर तौलने की कोशिश की तो मुझे लगा कि बहुत गजब की बात कही गई है। तो मित्रों, ये जो जेन्यूननेस है, व्हाट इज इट, ये क्या है, ये आती है लेकिन कहां से आती है, क्या अपने आप आ जाती है, क्या सब कुछ गॉड गिफ्टेड ही होता है? दोस्तों, ऐसा नहीं है। बचपन में तो हम सबकी भी हंसी ऐसी ही थी, बड़ी निश्चल, बड़ी मनमोहक। हमारे पेरेंट्स देखते रहते थे कि कब बच्चे के, यार बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आए, और हमारी मुस्कान से उनके अंदर के फूल खिल जाते थे। ऐसी ही थी, कहां चली गई, जेन्यून थी लेकिन गायब हो गई, हमने गायब होने दी है। दोष किसी का नहीं है कि समाज ऐसा है, लोग ऐसे हैं, लाइफ में ऐसे स्ट्रगल आए, नॉट एट ऑल, हमने जाने दिया है। अपनी उस संपत्ति को खोने वाले हम खुद हैं। अगर आपको इसके खोने के लिए कहीं FIR दर्ज करानी है तो अपने ही खिलाफ दर्ज करानी पड़ेगी, क्योंकि हमने खोया है। शान उसको बचा के रख सके, और भी बहुत लोग उसे बचाकर रख पाते हैं। तो मित्रों, ये जो जेन्यूननेस है, ये केवल हंसी से ही जुड़ी हुई नहीं है, जीवन के सारे क्षेत्रों में ये जेन्यूननेस मौजूद होती है। यहां तक कि आप जिसे अपनी असफलता मान रहे हैं, वो असफलता कितनी जेन्यून है। ऐसा तो नहीं है कि वो सफलता की एक सीढ़ी है लेकिन आपने उसे असफल हमेशा के लिए घोषित कर दिया है, ये जेन्यूननेस नहीं है। यहां तक कि हमारी जो दुख है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, ये कितनी जेन्यून है। क्या सच में ये दुख है, क्या सच में ये समस्या है? और अगर नहीं है तो समस्या भी जेन्यून नहीं है, जो नहीं ही होती है। मित्रों, आप सब प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, घर बार छोड़ करके मेहनत कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो कितनी जेन्यून है। अभी आप 7 तारीख को एग्जामिनेशन में बैठेंगे, सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन में, तो नंबर एक कि आपकी अब तक की प्रिपरेशन कितनी जेन्यून है, और जब आप परीक्षा में बैठने जाएंगे परीक्षा हॉल में, तब आप कितने जेन्यून रहेंगे। जेन्यून रहेंगे का मतलब है कि आपकी जो मेंटल इमोशनल जो बैलेंस है वो कितना परफेक्ट होगा। फिजिकली आप अपने को उस दिन कितना फिट महसूस कर रहे हैं, ये आपके एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने की जेन्यूननेस होगी। तो मित्रों ये जेन्यूननेस जो है इसको हम अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं ईमानदारी, कि हमें ईमानदारी कितनी है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कह रहे हैं, और यहां तक दोस्तों कि जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, उसमें ईमानदारी कितनी है। ईमानदारी का मतलब केवल लेन देन का मामला नहीं है कि हमने किसी से वायदा किया था और उतने पैसे उसके उस समय पर वापस कर दिए, केवल यही ईमानदारी नहीं है जिसको सामान्य तौर पर धन से जोड़कर देखा जाता है। ईमानदारी तो अपनी सोच के प्रति, अपने कथन के प्रति और अपने कर्म के प्रति होती है, कि क्या इन तीनों में एक बेस्ट या जो एक आदर्शतम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक जेन्यून संतुलन होना चाहिए, वो है। और मित्रों जैसे ही इन तीनों में संतुलन आएगा, आपके चेहरे की वही हंसी लौट आएगी जो जन्म लेते समय आप में थी। लेते समय तो हम रोते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जो हंसी हमारे ओंठों पर नृत्य करती रहती है, लय में मौजूद रहती है, बिना ध्वनि के मौन के माध्यम से व्यक्त होती है, और जिसमें इतनी ऊर्जा होती है कि हमारे ऊंटों की वह हंसी, वो हल्की सी, वो हल्का सा फैलाव, वो हल्की सी मुस्कुराहट घर भर में फैल करके सबके चेहरों की मुस्कुराहट में तब्दील हो जाती है, जिसमें इतनी बड़ी ताकत है। वो ताकत किसकी ताकत है दोस्तों? वो सच पूछिए तो हमारे तीनों चीजों की ताकत है। सोचने की ताकत आपकी मेंटल एनर्जी है, कर्म करने की ताकत आपकी फिजिकल एनर्जी है, और कहने की ताकत आपकी इमोशनल एनर्जी है। जब ये तीनों बेस्ट कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, अपने बेस्ट सच पूछिए तो रैखिक संतुलन में होते हैं, तब चमत्कार होता है, जीवन के सारे चमत्कार होते हैं। मित्रों आप सब तैयारी कर रहे हैं, अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, और जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, मान करके चलिए कि आप हर क्षण जीवन के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, हर क्षण गुजर रहे हैं। नदी को आप कहीं से भी पार कीजिए, ये नहीं कि केवल घाट से ही पार करना है, कहीं से भी पार कर लीजिए, आप उसी पानी को ही पार कर रहे हैं। पानी अलग अलग नहीं है, चाहे आप तिरछे होकर के उसे पार कर लीजिए। जीवन भी ऐसे ही, चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कीजिए, चाहे और किसी स्ट्रगल में जुटे रहिए, चाहे स्ट्रगल न ही कीजिए, हम सब समय के जल को तो लांग ही रहे हैं, और समय का एक ऐसा जल जो वापस नहीं आना है। तो चाहे जिस रूप में वो जल मौजूद है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एवरी मोमेंट इज इंपॉर्टेंट, वो नहीं लौट कर आएगा। तो सवाल यह है कि उस पर हमारी कितनी जेन्यून पकड़ है, हम उसको कितने जेन्यून तरीके से जी रहे हैं, हम उसका कितना सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि केवल पानी को पैरों से लांघना ही नहीं है, बल्कि उस लांघने के दौरान क्या हम उस पानी के ठंडक को अपने पूरे शरीर में सेहरन के तौर पर महसूस कर पा रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप उस पानी के ठंडक को, उस पानी के ताप को, उस पानी की निर्मलता को, उस पानी के कलकल को, छलचल को महसूस करते हैं, और महसूस करते हुए उसे अपने अंदर उतार लेते हैं कि मेरे पैर तो पानी की धाराओं को जरूर लांघ रहे हैं, लेकिन ये पानी की धारा तो मेरे अंदर ही उतर गई है, और मुझे अंदर से कहीं सिंचाई कर रही है, अंदर से कहीं निर्मल बना रही है, तो वो तो फिर स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और क्या स्पिरिचुअल एनर्जी। तो दोस्तों आप सब अपने उस जेन्यूननेस को ढूंढिए, उस जेन्यूननेस पर जाइए, और बहुत सरल शब्दों में मैं फिर से एक इस्तेमाल कर देता हूं उसी शब्द का, मेरे लिए जो जेन्यूननेस का मतलब है वह है सिर्फ ईमानदारी। किसी दूसरे के प्रति ईमानदार होने के लिए मत कोशिश कीजिए, सिर्फ अपने प्रति हो जाइए। जिस दिन आप अपने प्रति ईमानदार हो जाएंगे, मानकर चलिए कि आप दुनिया के प्रति ईमानदार हो ही जाएंगे। आप दुनिया, हम दुनिया के साथ बेईमानी थोड़ी करते हैं, और तब तक कर ही नहीं सकते जब हम खुद के साथ बेईमानी न कर रहे हों। जब तक दुनिया के साथ कर ही नहीं सकते ना, कैसे होगा, करने वाले तो हम ही हैं ना। हमारी ही तो चेतना है जो करा रही है। तब आप देखिएगा मित्रों, आप करके देखिए, हर चीज में जेन्यूननेस वापस आ जाएगी और फिर आपकी हर चीज दूसरों को बेहतर लगने लगी। किसी को आपकी हंसी, किसी को आपका बैठना, किसी को आपका बोलना, किसी को आपका देखना और किसी को आप संपूर्ण रूप से, बस खत्म, दैट्स ऑल, फिनिश्ड। ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है मित्रों, ये शायद मुझे लगता है कि सबसे सरल काम है, बशर्ते कि आप ऐसा करने की ठान लें। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में इतना ही। अब आप इसे अपने सिविल सर्विस से जोड़कर बिल्कुल देख सकते हैं। बीच में मैंने संकेत के तौर पर आपसे ये कह भी दिया है कि आप इसे कैसे जोड़कर देखेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। सामान्यतः आपने देखा है कि सोमवार को आकाशवाणी समाचार में कुछ खास मित्रों होता नहीं है। प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात जो प्रोग्राम होता है, मैं उसका प्रशंसक रहा हूं। और चूंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रथम, मतलब सीईओ हैं, प्रथम व्यक्ति नहीं, सीईओ हैं, तो स्वाभाविक है कि वो जो बात कहते हैं वो एक राष्ट्र से उनकी अपील होती है, राष्ट्र से अपेक्षाएं होती हैं। और सच पूछे तो उनके बिहाव पर राष्ट्र से किया गया एक वायदा भी होता है। तो कोशिश करें कि आप लोग जरूर उनके मन की बात वाले प्रोग्राम को देखें। मन के प्रोग्राम में आपने देखा, मन की बात के अंतर्गत उन्होंने जो सिविल सर्विस के लिहाज से जो मुझे उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीजें निकली, दो पॉइंट मुझे दिखाई देते हैं। पहला तो यह है, उन्होंने नवाचार और टेक्नोलॉजी की बात कही है, मतलब कह लीजिए कि आविष्कार और टेक्नोलॉजी की बात, नवाचार की बात कही है। देखिए दोनों में फर्क है। अनुसंधान तो होता है दोस्तों, जब आप कोई नई चीज खोजते हैं, नई टेक्नोलॉजी ढूंढ लेते हैं आप, तो वो अनुसंधान है, कुछ प्रयोग कर लेते हैं नया, तो वो अनुसंधान है, है ना। और जो नवाचार है कि उन जो प्रयोग, जो ऑलरेडी चीजें मौजूद हैं, उनका कुछ नए तरीके से इस्तेमाल करके एक नया बिजनेस खड़ा कर ले रहे हैं, एक नया काम कर ले रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि नेट, इंटरनेट, मोबाइल, ये पहले से अवेलेबल थी, चीजें थी, तो वो अनुसंधान हुआ। जब अब ढूंढा गया था होगा, इनकी खोज की गई होगी, तो उस समय ये अनुसंधान हुआ था, खोज हुई थी। लेकिन अब इसका देख रहे हैं कि कितने कितने तरीके से प्रयोग हो रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने लगा, वो उसका एक प्रयोग हो गया। ओला और उबेर जैसे जो कैब हैं, वो इनके माध्यम से बुकिंग होने लगी, वो अब एक नवाचार हो गया। बैंकों में पेमेंट होने लगे, वो एक नवाचार हो गया। तो ये नवाचार है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब जो भविष्य है इन दो चीजों का है, टेक्नोलॉजी और नवाचार। तो इस पर उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि आप लोगों को इस पर काम करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही मौजू सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कम से कम ऐसे राइटिंग के लिहाज से तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, उन्होंने वनीकरण क्षतिपूर्ति कोर्स के बारे में बात कही है, जिसकी चर्चा मैंने इससे पहले शायद दो या तीन दिन पहले अपने डेली ऑडियो गाइडेंस में की भी थी कि केंद्र सरकार ने एक कोष की स्थापना की है जिसमें 40-42 हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं जो राज्यों को दिए जाएंगे, और ताकि वो अपने यहां वनीकरण कर सकें, जो वन की कमी जो हो रही है उसकी पूर्ति कर सके। इस पर मित्रों हम आगे चल करके बात करेंगे, क्योंकि जो एनवायरमेंट है आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये उसी से ही जुड़ा हुआ है। तो इस पर हम लोग जैसे ही कुछ चीजें और मिलेंगी, इस पर हम लोग स्वतंत्र रूप से बात करेंगे। तो मित्रों, AIR न्यूज में कुछ खास नहीं है, प्रेस क्लिपिंग्स से कुछ जरूर है, लेकिन आज मैं प्रेस क्लिपिंग्स से बात न करके आपसे अब जो संडे को आपको सिविल सर्विस का जो मेन एग्जाम देना है उस पर मैं कुछ आपसे आज बात करूंगा। और एक दिन, जिस दिन भी संभव होगा, डेफिनेटली फ्राइडे से पहले पहले, अंतिम टारगेट फ्राइडे है, मैं आप लोगों से इस मुद्दे पर भी बात करूंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उस सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। वो मैं अपने ढंग से, जो मैंने तरीका निकाला है या महसूस किया है या प्रयोग किए हैं, उसकी चर्चा मैं इन बीच के 5 दिनों में डेफिनेटली आपसे करूंगा। मित्रों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि अब आपके पास मात्र 6 दिन बचे हुए हैं, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, और इतवार के सुबह तो आप परीक्षा हॉल में होंगे। इन 6 दिनों का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो बेस्ट यूज हो सकता है। डेफिनेटली आप सबने अपने अपने ढंग से इसका प्लान कर रखा होगा। अगर मेरी बातों से आपके उस प्लान को डिस्टर्ब आप महसूस करते हो तो आप बिल्कुल इसे ड्रॉप कर सकते हैं। इस प्लान को आप ऐसा ना सोचें कि कोई रामबाण में औषधि बता रहा हूं, है ना। ये मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, दूसरों से बातचीत करने के बाद जो एक सामान्य सा जो एक फार्मूला निकलता है, सच पूछे तो मैं वह आपके सामने रख रहा हूं। तो मित्रों पहली बात तो देखिए यह कि आप जितना भी पढ़ सकते थे, आप जितनी भी तैयारी कर सकते थे, आप मानकर चलिए कि आप कर चुके हैं। अब 6 दिन में जो बचे हुए हैं इसमें आप कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ नहीं लेंगे। चाहे आप इन 6 दिनों में अपने पढ़ने की के घंटे डेली 18-18 ही क्यों ना कर दें, उससे कुछ भी नहीं होना जाना है। और ये बात स्पेशली मैं इस आधार पर कह रहा हूं जिस तरीके के क्वेश्चंस सिविल सर्विस प्री में पूछे जाते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से अनसॉल्व पेपर को देखने के बाद ये महसूस किया होगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं। तो मान करके चलिए कि आप 6 दिनों में अंडरस्टैंडिंग तो किसी की भी डेवलप नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और वो जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसका भंडार इतना व्यापक है, इतना बड़ा है कि आप अब 6 दिन में सोचें कि उसमें से कुछ जिसे हम बोलचाल की भाषा में फंस जाएगा कहते हैं, उस आधार पर आप उसको फंसा लेंगे तो वह भी एक कपोल कल्पना ज्यादा है, सच्चाई उसमें कम है। अगर मान लीजिए कि 6 दिनों की बहुत मेहनत के बाद 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ने के बाद 2-4 क्वेश्चंस आपके पल्ले पढ़ भी गए तो उससे कुछ बहुत बड़ा होना जाना नहीं है। हालांकि आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन के लिए भी चूक जाते हैं, वो एक अलग बात है, तो रिजल्ट आने के बाद पता लगता है। लेकिन अभी आपको नहीं मालूम कि अगर आप 15-15, 12-12 घंटे पढ़ करके अपने दिमाग में और ज्यादा कंटेंट भर लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके ठीक हो जाएंगे और आपको लगेगा अरे मैंने इस समय पढ़ा था, इस बीच में पढ़ा था। लेकिन आपको ये आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे कि इस हड़बड़ी में और इस दिमाग में और ज्यादा से ज्यादा भर लेने के चक्कर में आप 2-4 गलत भी कराए हैं, तो उसको हम नहीं पकड़ पाते। जो हमसे गलतियां होती हैं ना वो नहीं पकड़ में आती हैं, जो सही हो जाते हैं वो पकड़ में आते हैं। इसलिए मित्रों अब आपको ये जो 6 दिन हैं इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जो आदत होती है उसको ड्रॉप कर दीजिए। बहुत ज्यादा जो मेहनत करने का हमारा जज्बा होता है या कह लीजिए कि एक तरह से आदत पड़ी हुई है कि परीक्षा के दिनों में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, आप उसे भी भूल जाइए। तो बाबा आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना है। मैं आपको उसके बारे में कुछ बातें बताता हूं। 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट, 3 बातें मित्रों जो मैं अक्सर कहता हूं। फिजिकली यू हैव टू बी फिट, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको फिट रहना है। अपने डाइट पर ध्यान दीजिए, बरसात के दिन है, बरसात के दिनों में संक्रामक बीमारियां बहुत होती हैं, वायरल फैल रहा है, पानी दूषित हो जाता है, पानी अच्छा पिए। जहां भी संक्रामक इस तरह की बीमारियों के फैलने का डर है हो रहा है उनसे बच करके रहिए ताकि आपकी फिजिकली फिटनेस बनी रहे। फिजिकली फिटनेस बनने का दूसरा इंपॉर्टेंट आधार है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, इसमें कोई कटौती मत कीजिए। अगर आपकी आदत 7 आवर्स स्लिप की है, 8 घंटे सोने की है, तो ये मत सोचिए कि परीक्षा के दिनों में आप 8 घंटे सोकर कुछ अपराध कर रहे हैं। पूरी नींद लीजिए। अपने डाइट पर ध्यान दीजिए, होटल का खाना, बाहर का खाना बंद कर दीजिए। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बाहर ही रहकर तैयारी कर रहे हों, तो प्लीज वो देख कर खाएं कि बाहर कहां उनको खाना है, जहां साफ सफाई हो, अच्छी जगह हो, वही खाएं। तली चीजें, उस तरह की जो आपके जो बिल्कुल उस तरह के फूड होते हैं तुरंत बने हुए हैं और फास्ट फूड जिसे आप कहते हैं, प्लीज कुछ दिनों के लिए उन्हें बंद कर दीजिए, चाहे वो आपके लिए कितने भी प्रिय क्यों ना हो। अपने जीभ पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, चले आइए आप फ्रूट्स पर, चले जाइए दूध पर, चले जाइए जूस पर, चले जाइए, लेकिन आपका खाना बहुत सादा होना चाहिए। ये आपके फिजिकल फिटनेस के थोड़े से उपाय हैं। यू हैव टू बी फिजिकली 100% फिट, इस पर पूरा ध्यान दीजिए। अब मैं आता हूं मित्रों मेंटल एनर्जी पर, मेंटल स्ट्रेंथ पर। सोचना बंद कर दीजिए क्या पूछा जाएगा, स्टॉप थिंकिंग एट ऑल। आप अगर अभी सोचेंगे भी कि क्या पूछा जाएगा, वो पूछा नहीं जाएगा, उसकी संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि आप सोचने लगे कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। अब आप उत्तर सोचने की कोशिश कर रहे हैं, आपने उत्तर सोच लिया, फिर आप किताब से मिला रहे हैं तो पता लगा कि आपने जो सोचा था, जो उत्तर दिया था, वो गलत है। यू हैव लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे और एक ऐसी चीज के लिए लूज कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, एक काल्पनिक भूत कि आ जाएगा, खा जाएगा, जबकि द भूत है और अगर होगा भी तो आएगा और खाएगा, इसकी संभावना न्यूनतम है क्योंकि उसको पास खाने के लिए और आने के लिए बहुत सी जगहें हैं। इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में आपने सोच लिया कि मेरे पास ही आ जाएगा, ब्रह्मांड में पूरी जगह कहीं भी जा सकता है, तो आपके पास आने की संभावना तो नहीं के बराबर है। सोचना बंद कर दीजिए कि क्या पूछा जाएगा। अपनी तैयारी के बारे में भी सोचना बंद कर दीजिए कि मैंने कौन सा छोड़ दिया है, जो छोड़ दिया है वो छोड़ दिया है। अपने दिमाग पर कंट्रोल रखिए, जैसा कि मैंने कहा अपने जीभ पर कंट्रोल रखिए, मित्रों इसी तरह से अपने दिमाग पर कंट्रोल रखिए और केवल ये सोचिए कि जो होना था हो चुका है, अब जो आएगा उसे मैं करूंगा, उसे ठीक होना है, बस खत्म। जो पूछा जाएगा देखा जाएगा। धीरे धीरे जब आप इस एंगल से सोचेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होता चला जाएगा, एक अलग किस्म का आत्मविश्वास आप देखेंगे आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके पास अभी जो कुछ भी आत्मविश्वास के रूप में है, कम से कम आप उसे खोएंगे तो नहीं। तो स्टॉप थिंकिंग, क्या आएगा, बिल्कुल बंद कर दीजिए। राइट, अब मित्रों अब आप करेंगे क्या, कर्म के स्तर पर आप क्या करेंगे, जो दिन बचे हुए हैं। तो अब ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि आप केवल फिल्में देखिए, केवल सोते रहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो आपके जो सिलेबस है और जो आपके अनसॉल्व्ड पेपर हैं, उसके आधार पर मैं आपको दो सब्जेक्ट सजेस्ट करता हूं। आप इन दो सब्जेक्ट की किताबें पलटते रहिए। नंबर एक डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो पढ़ने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब चुन लीजिए। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट ही के रूप में ले रहे हो, तो उनके लिए तो फिर ये बाएं हाथ का खेल है, तो वो अपने ढंग से फिर अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग मित्रों 15% क्वेश्चंस आ जाते हैं, 15%, तो उसमें आपकी जो गलत होने की जो आशंकाएं रहेंगी, संभावनाएं रहेंगी, वो न्यूनतम हो जाएंगी और केवल बस सिंपल तरीके से स्थिर और शांत मन से उन्हें पढ़ते जाइए बस। और सोचिए मत, स्टॉप थिंकिंग एट ऑल, सोचिए मत। तो मित्रों पहला है आपका पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन, इस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा देख लीजिए। दूसरा सब्जेक्ट मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा मित्रों, वह है हिस्ट्री का फ्रीडम स्ट्रगल, दैट्स ऑल, हिस्ट्री में और कुछ दूसरा नहीं, हिस्ट्री बहुत बड़ा है। जो भी आप तैयारी कर चुके हैं मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा कि आपने ये किया कि नहीं किया, नॉट एट ऑल। हिस्ट्री में जो फ्रीडम मूवमेंट का जो हिस्सा है, 1857 के बाद का जो इतिहास है, और वो भी 1885 कांग्रेस की स्थापना से शुरू होता है से लेकर के आजादी तक, इससे भी क्वेश्चंस कंटेंट बेस्ड आते हैं, कब हुआ, कहां हुआ, उसमें क्या क्या थे, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो 6 दिन के लिए अपने प्रिपरेशन को एज ए सब्जेक्ट आप इन दोनों तक कन्फाइन कर दीजिए। इससे आपको जो फायदा मिलेगा मेहनत के बदले में, अगर आप सब सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे और ये आप दो सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे, इसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। राइट, तीसरा काम जो आप कर सकते हैं मित्रों वो ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस लीजिए जो प्री में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको 2-2 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इससे आपका जो दिमाग है वो एक उस लय में ढलने लगेगा, उस स्वरूप को ग्रहण करने लगेगा। और बट नेचुरल है कि आप इससे पहले भी ये चीजें कर ही रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर रहे थे, वो बकायदे आप कर रहे होंगे, लेकिन अब उसको कंटिन्यू रखिए, उसे ड्रॉप मत कीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको लेकर के परेशान मत होइएगा, अपने स्कोर को भी लेकर के परेशान मत होइएगा। जो भी आपका स्कोर आ रहा है वो आ रहा है, दैट्स ऑल। हां, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है जो आप जानते थे लेकिन प्रैक्टिस के समय आपने गलत कर दिया, उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। और जो विचार करना है वो केवल साइकोलॉजिकल लेवल पर करना है, नॉलेज के लेवल पर नहीं, कि साइकोलॉजिकली आप क्या उस समय डिस्टर्ब थे या आपसे कहां किस तरीके की गलती हुई कि ये क्वेश्चन जिसे आप जान रहे थे गलत हो गया। क्या टाइम प्रेशर था, क्या भ्रम हो गया था, क्या जल्दबाजी में पढ़ने के कारण कुछ गड़बड़ी हो गई। तो केवल अपना साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, तब फिर आपको यह समझ में आएगा कि नहीं, मुझे मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को इस सिचुएशन में रखना है। तो मित्रों केवल यह कीजिए बस, और इत्मीनान से रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर परेशानी से आपको सफलता मिलती होती तो मैं यही कहता कि सब काम छोड़ छाड़ करके और सिर्फ परेशान होने का काम कीजिए रिमेनिंग 6 डेज। उससे कुछ भी नहीं होना है, जो कुछ भी होगा वो इस बात से होगा कि अब आप कितने खुश हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। झूठा ही सही, झूठा ही सही, मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन खुश रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। आप दूसरे, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे और आप खुश नहीं रहेंगे, उसकी तुलना में आपको बेहतर ही रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा करके, यदि आप खुश रहते हैं और यदि आप आत्मविश्वासी बने रहते हैं। तो मित्रों ये 6 दिन का मैंने थोड़ा सा आपको एक शेड्यूल सा बताया है, आप इसमें से जो चाहे आपको अपने लिए जो अनुकूल लगता हो आप उसे कर सकते हैं, और फिर आप देखें संडे को कि उसके क्या परिणाम किस तरीके से आपको मिलते हैं। तो मित्रों मैं अब इस AIR न्यूज वाले पार्ट में और प्रेस क्लिपिंग्स वाले पार्ट को इसके माध्यम से अब यहीं समाप्त करता हूं, और आप अभी से मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप सब अपने अपने प्रयासों में सफल हों। दोस्तों अब है ईमेल का चरण, सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, दीपक कुमार पटना से, सुभाष चंद्र नायक, अभिषेक पांडे इलाहाबाद से, बबलू गोविंद वाले हैदराबाद से, दिशित शाह बड़ोदरा गुजरात से, ब्रिजेश मिश्रा नासिक महाराष्ट्र से, ओम प्रकाश पटना से, उमा उपाध्याय पश्चिम बंगाल से, आशीष कुमार भागलपुर बिहार से, अमित कुमार गिरिडीह झारखंड से, मांजरे मारोति नांदेड़ महाराष्ट्र से, स्वस्तिक कोलकाता से, पंकज कुमार सिंह नवादा बिहार से, और अभिनव मिश्रा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।